Ramzan salli Rasulikrim. Auzu billahi min shaitanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum khawatin wa azraat. सवाल किसी ने पूछा है कि क्या वजह है कि इंसान अपने बदतरीन दुश्मन को माफ तो कर देता है लेकिन उसके साथ दोबारा मेलजोल या करीबी ताल्लुक रखने पर दिल को आमादा नहीं कर पाता। मेरे ख्याल में इस सवाल को थोड़ा सा अगर मुख्तलिफ तरीके से कहा जाए तो ज्यादा हकीकत के करीब हो जाएगा कि क्या वजह है कि इंसान अपने बदतरीन दुश्मन को माफ तो कर देता है लेकिन उसके साथ दोबारा मेलजोल या करीबी ताल्लुक रखने पर दिल आमादा नहीं होता। ये ज्यादा सही है, इसलिए कि ओरिजिनल सवाल के मुताबिक तो इंसान की अपनी बेबसी जाहिर होती है जबकि ऐसा नहीं है। इंसान को रब ताला ने इतना बेबस नहीं पाया कि वो अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सके। अगर ये वजह न होती तो फिर रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स से जहाद करने को न कहते, चूंकि इंसान में ये रब ताला ने कुव्वत रखी है कि वो अपने नफ्स के साथ लड़कर नफ्स को जेर कर ले। इसीलिए नफ्स के खिलाफ जहाद की तलकीन की हुई है। गर्चे ये खासा दुश्वार काम है, वो अपनी नेचर में खासा अपहिल टास्क है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए इसका अजर बहुत ज्यादा है। तो अब आते हैं सवाल की तरफ कि क्या वजह है कि इंसान अपने बदतरीन दुश्मन को माफ तो कर देता है लेकिन उसके साथ दोबारा मेलजोल या करीबी ताल्लुक रखने पे दिल को आमादा नहीं कर पाता। अगर हम अपने जहन में क्लियर हों कि माफ कर देने का मतलब क्या है, वो क्या मायने रखता है, माफ कर देने का लफ्जी मफहूम नहीं बल्कि उसका इस्तिलाही मफहूम क्या है, तो फिर हमारे लिए ये दुश्वार नहीं होगा। मुसलमान रहनुमाई लेता है कुरान से, हदीस से, सुन्नत से और सहाबा कराम के जिंदगी गुजारने के ढंग से ये रोशनी लेता है। तो रब ताला के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब हम रब ताला के हजूर माफी मांगते हैं किसी चीज की और आइंदा के लिए तौबा कर लेते हैं इन दो चीजों में एक फर्क है, माफी है उस चीज की जो हम कर गुजरे, उसके लिए हम उस गुनाह के लिए माफी चाहते हैं रब ताला से, माफी मांगते हैं रब ताला से। और ये वादा कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे, वो तौबा है। और ये हम सभी जानते हैं कि जब हम रब ताला से माफी मांगते हैं तो वो हमें इस तरह से माफ कर देता है कि गोया कि हमसे वो गुनाह या कसूर हुआ ही नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हयात तैयबा का मुताला कर लीजिए शुरू से आखिर तक का। तो उससे एक अंदाजा ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ करते हुए कभी ये इंतजार नहीं किया कि कोई गुनाहगार आके, कोई कसूरवार आके माफी मांगे तो उसे माफ किया जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की कोताहियों और खताओं से बशर्ते कि उसका ताल्लुक दीन से ना हो, वैसे ही सरफे नजर कर देते थे। अलबत्ता कहीं अगर दीन में कोताही हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलफौर तसीह फरमा देते थे उस आदमी की। लेकिन जहां तक अपनी जात की बात है या दुनियावी मामलात की बात है तो उसमें अगर किसी से कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई, हत्ता कि किसी ने प्लैंड गलती भी कर ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माफी मांगने का इंतजार नहीं फरमाया, बल्कि उसको वैसे ही माफ फरमा दिया। सहाबा इकराम में यही तौर तरीके रहे। तो जब हम रोशनी कुरान से, हदीस से, सुन्नत से, सहाबा इकराम से लेते हैं तो फिर हम किसी ज्यादती करने वाले शख्स को इस तरह से माफ क्यों ना कर पाए कि गोया कि उसने वो खता की ही नहीं थी। रोशनी तो फिर हमें इसी तरह लेनी चाहिए। तो अगर हमने किसी को इस तरह माफ कर दिया कि गोया उसने कोई खता की ही नहीं थी, तो फिर हमारे दिल में कोई रंज या कोई गुस्सा या कोई गिला या कोई शिकवा बाकी नहीं रहना चाहिए। और जब हमारे दिल में किसी के बारे में कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है तो दिल उससे दोबारा मिलने के लिए क्यों आमादा नहीं होगा। बात यह है कि इंसान को खुद अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए। तो हम अगर अपने नफ्स के साथ लड़े और नफ्स इस शरारत के खिलाफ काम करें कि वो हमें ऐसे लोगों से मिलने से रोके जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, उसके खिलाफ हम जहाद करें। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर इंसान ने नेकी की तरफ जाना हो तो आसान तरीन रास्ता ये है कि इंसान हर वो काम करे जिससे नफ्स रोक रहा हो, या हम नफ्स की ख्वाहिश के 180 डिग्रीज अपोजिट काम करें ताकि हम भलाई के रास्ते पर चल जाएं। इस हिसाब में जनाब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक फरमान कोट किया है कि दिल की तख्लीक का मकसद यह है कि वो इश्क के गिर्द घूमे और तवाफ करे, और वो इश्क सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। क्या वजह है कि दिल अपनी तख्लीक के मकसद के बरक्स दुनियावी और मुजाजी मोहब्बतों के तवाफ में मुब्तला रहता है? भाई, ये बात वहीं चली गई जो अभी थोड़ी देर पहले मैं अर्ज कर रहा था। ये दिल नहीं है जो दुनियावी ख्वाहिशात का गुलाम है, ये हमारा कल्ब नहीं है जो दुनियावी मोहब्बतों के गिर्द घूमता है, बल्कि नफ्स है। हमारे नफ्स की ख्वाहिशात हैं, तो नफ्स की ख्वाहिशात को ब्रेक कर देना सलामती का रास्ता है। नफ्स की ख्वाहिशात को रद्द कर देना हमें फलाह की तरफ ले जाएगा। तो अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया तो हमारा दिल ऐसी आलाइशों में मुब्तला नहीं होगा, क्योंकि साहबे इल्म, साहबाने इल्म और औलिया कराम और फुकरा और बुजुर्ग, इनके नजदीक गैर अल्लाह से मोहब्बत, बल्कि इसको ज्यादा वाजी अगर करना हो तो सवाए अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत की, साहबे कराम से मोहब्बत के अलावा जिस तरह की भी मोहब्बत में हम मुब्तला होते हैं वह नफ्स है। गरचे इंसानी कमजोरी है ये कि वो औलाद से बहुत प्यार करता है, माल से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसको खत्म कर देना ही तो जहाद है। तो अजर इसी लड़ाई के नतीजे में कामयाब होने के जवाब में मिलता है। तोहमतें, इल्जामात, किरदार कुशी, दिल का टूटना, बेघरी, हिजरत, क्या ये सब रूहानियत के राही के लिए कंपल्सरी पेपर्स हैं? मैं इसको इम्तहान तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर है। दुनियावी आराम आसाइश खुशहाली ये सब चीजें इंसान के दिल को सख्त कर देती हैं। जबकि दिल में गुदास और रिकत गमों और दुखों ही से आती है। इंसान की गुर्बत का एहसास वो आदमी नहीं कर सकता जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। जिस आदमी ने गुर्बत की मार खाई है उसी को किसी गरीब का दुख होता है। इसी तरह झूठे इल्जाम तोहमते हैं इंसानी दिल को जिस तरह से जख्मी करती हैं, और खास तौर पर जबकि वो ये सब चीजें जुबान पर भी ना लाता हो कि मेरे साथ बीत क्या रही है। दुखों पर खामोश रहने से सबर करने से तकलीफ सवाया हो जाती है, और ऐसे मौके पर उफ न करना बल्कि लोगों के सामने खुश चेहरा पुट अप करना ये दिल को और ज्यादा जख्मी करता है कि गुबार कहीं निकाल नहीं सकता आदमी। तो फकीर लोग इस दुख को बड़े हंसते खेलते पी जाते हैं, इसलिए कि तकलीफ के वक्त हाय कह देना उनके नजदीक शायद ना शुक्रगुजारी है। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए बनाई जाती है कि इससे इंसान के अंदर सब्र और दरगुजर और माफ कर देने का जज्बा पैदा हो। तो फकीर जब अल्लाह की राह अख्तियार करता है उस राह पर चलता है तो पेशते इसके कि वो फकीर के मकाम से सूफी के मकाम तक जा पहुंचे उसे इस तमाम ट्रेनिंग से गुजरना, और इसको हंसते खेलते झेलना है। लोगों के सामने अपने आप को बड़ा खुश जाहिर करना है। तो ये इम्तिहान नहीं है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके जरिए शागिर्द ये जान सके कि उसके शेख उससे राजी हैं? یہ فکر مت کیجئے کہ شیخ آپ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں, بس شیخ کے کہے پر عمل کرتے چلے جائیں. یہ قدرتی امر ہے کہ ہر انسان کو ایسا انسان اچھا لگتا ہے جو اس کے کہے پر بغیر کوئی کیوں کب کیسے کس طرح کہے عمل کرتا جائے. تو جب ہم اپنے مرشد کے کہے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے چلے جاتے ہیں, ان کی تمام باتیں ان پہ عمل کرتے ہیں, بلکہ ان کے کردار کو فالو کرنے لگتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ شیخ تو خوش ہو ہی جائیں گے. تو اس کی فکر مت کیجئے کہ آپ کے شیخ آپ سے خوش ہیں یا نہیں, صرف ایک فکر کیجئے کہ آپ اپنے شیخ کے ہر بات پر من و ان عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا, شیخ کو دیکھ دیکھ کے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں, اتنا ہی کافی ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ شیخ کسی شاگرد سے ناراضگی کا اظہار یوں کرتا ہے کہ اس کے سامنے بظاہر کوئی خلاف شریعت حرکت کرتا ہے, یا کسی ایسی شے کی پیشگوئی کرتا ہے جو پوری نہیں ہوتی, یوں وہ شخص بدل ہو کر لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے؟ اس میں دو چیزیں آ جائیں گی. جب شیخ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے, بظاہر شریعت کے خلاف ہے, میں بظاہر پر زور دے رہا ہوں, تو وہ اس کے ذہن میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو خلق خدا کو اپنے سے دور بھگانا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا چھوڑ کر چلے جائے. ناراضگی نہیں ہے, بلکہ وہ لوگوں سے دور جانا چاہتا ہے, بلکہ خدا کو دور بھگانا چاہتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے, لوگوں کے سلاموں کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا ہے, اور چونکہ صاحب علم ہے اسے معلوم ہے کہ یہ تکبر اسے تباہ کر دے گا. تو وہی لوگ جو اس کو واہ واہ کرتے نظر آتے ہیں اپنے لیے, ان کے سامنے بظاہر شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, تو وہی لوگ جب اسے برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا نفس جو پھل پھول کے بڑا ہو گیا تھا, نفس کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے, تو یوں وہ تکبر سے بچ جاتا ہے. یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی زمانے میں یہاں میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ ایک صاحب تھے جنہیں علم فقہ و حدیث پر بہت عبور حاصل تھا, اور ان کی شہرت رب تعالیٰ نے تمام دنیا میں پھیلا دی تھی. अहले अरब ने उन्हें दावत दी कि आप हमारे यहां तशरीफ लाएं और यहां लोगों को इल्मे फिका और इल्मे हदीस ये पढ़ाएं। वो साहब अपने कुछ शागिर्दों के साथ तशरीफ ले गए। जब वो मदीना के बाजारों में पहुंचे तो रमजान था और दिन का वक्त था, तो अहले मदीना की एक बड़ी तादाद उनको रिसीव करने के लिए शहर से बाहर खड़ी थी और जुलूस की सूरत में उन्हें वो शहर ले गए और रास्ते में उनके जिंदाबाद के नारे और दूसरे तौसीफ और अल्फाज कहे जा रहे थे। तो बाजार में एक साहब खजूरें बेच रहे थे, उन्होंने दुकानदार से परमिशन लेके दो खजूरें वहां से उठा ली और खा ली। तो वही लोग जो उन्हें जुलूस की शक्ल में लेके आए थे शहर में, वो उन्हें बुरा भला कहते हुए चले गए कि ये कैसा आलिम है कि न तो रोजे रखता है न रमजान का एहतराम करता है। तो उनके साथ सिर्फ उनके वही शागिर्द रह गए जो यहां से साथ गए थे उनके। तो जब तन्हाई हुई तो एक शागिर्द ने ये पूछा कि हजरत ये क्या आपने किया, इतनी बेतहाशा इज्जत आपको दी गई थी, ये आपने क्या किया? उन्होंने फरमाया कि ये नादान है, इनका ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया, अगरचे वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं इस बात का, लेकिन उधर ध्यान नहीं गया कि मैं मुसाफिर हूं और मुझे रोजे से छूट है। तो ये हरकत इसलिए मैंने की थी कि दर हकीकत इस इस्तकबाल से और उनको उनकी तरफ से मुझे बुलाए जाने से मेरे नफ्स में ऐसा तकब्बुर आ गया था कि जो मुझे कल को बर्बाद कर देता। तो अपने नफ्स को ठिकाने पर लाने के लिए जरूरी था को वही लोग जिनकी तारीफ मेरे नफ्स में तकब्बुर आया है वही मुझे बुरा भला कहे। तो इसलिए मैंने खजूरें उठा के मुंह में डाल ली, लेकिन लोगों ने नोट नहीं किया कि मैंने दुकानदार से इसकी परमिशन ली थी। तो बगैर इजाजत मैंने किसी का माल नहीं खाया। तो आपके शेख अगर ऐसी हरकत करते हैं तो उसके पीछे ये दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो लोगों से अपने आप से दूर भगाना चाहते हैं या उनमें उन्हें खदशा है कि मेरा नफ्स फलने फूलने लगा है इस तारीफ से और इस एहतराम से जो लोग देते हैं, तो अपने नफ्स को ठिकाने पर लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें नाराजगी का पहलू नहीं, और जहां तक आपके शेख की किसी पेशगोई के पूरे न होने की बात है तो ये खुद मेरा और आपका और हम सब का कसूर है। पहली बात तो ये है कि हमें शेख की ऐसी बातों पे तवज्जो देनी ही नहीं, दूसरी बात हमें हर वक्त ये एहसास रहना चाहिए कि आलमुल गैब सिर्फ रब है कोई इंसान अलबुल गैब नहीं हो सकता सिवाय इसके कि रब ताला किसी को कोई चीज दिखा दे अपनी रहमत के सदके या किसी चीज का अपनी रहमत के सदके उसे अदराक दे दे। उस सूरत में अगर वो बात कह दे कोई तो और चीज है, लेकिन इल्मे गैब उसके पास नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी की हुई दुआ कोई कबूल नहीं होती है तो हमें अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हमारे शेख भी अल्लाह के एक मोहताज बंदे हैं। ये इख्तियार कुलियतन सिर्फ और सिर्फ रब ताला का है कि वो किसी दुआ को कबूल फरमाए या किसी दुआ को कबूल न फरमाए। ये सही है कि वो अपने दोस्तों की बात मान लेता है, लेकिन उसकी मसलहतों को आज तक कोई नहीं समझ सका और ना कोई समझ पाएगा। हो सकता है कि किसी ऐसी चीज की दुआ उसने की है आपके शेख ने जो रब ताला की जो ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें फिट नहीं बैठती है, इसलिए वो दुआ पूरी नहीं हुई। हम खता वहीं खाते हैं जब हम अपने शेख को अपनी कम इल्मी या लाइल्मी की बुनियाद पर यह समझ बैठते हैं कि नाउज़ुबिल्ला कहीं वो इस मकाम पर है कि हम कोई मुश्किल उससे बयान करेंगे तो हल कर देगा। नाउज़ुबिल्ला, ये तो सिर्फ रब है जो हमारी मुश्किलों को दूर करता है, ये सिर्फ रब है जो हमारी दुआएं सुनता है, कबूल करता है और पूरी करता है। ये तीन चीजें हैं दुआ के बारे में, दुआ का सुनना, दुआ का कबूल करना और दुआ का पूरा करना। ये कुलियतन रब का इख्तियार है, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा एक बात का जोर देता हूं कि हम अपने मुर्शिद को इंसान ही समझें, उसको इंसान के दर्जे से बुलंद न प्लेस कर दें कहीं, इसलिए कि है तो वो बंदा अल्लाह का, आका भरल रब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान कहीं मैंने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे मकाम से बुलंद न करो कि रब ताला ने मुझे रसूल बनाने से पहले बंदा बनाया था। बंदगी पहले आई है, रसालत बाद में है। तो अगर आप जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती कही आलम है तो हमारी हैसियत ही क्या है? कोई शेख कितने ही बड़े क्यों ना सही, उनकी क्या हैसियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? तो ये कसूर हमारा है। हम अपने शेख को ऐसे मकाम पर बिठा देते हैं कि बाद में फिर हमें मायूसी होने लगती है। शेख को इंसान ही रहने दीजिए और अपने जहन में हमेशा ये रखिए कि हमारे शेख का यह मर्तबा इसलिए है कि वो साहिब इल्म है और तकवा में हमसे बेहतर है। इसलिए वो काबिल एहतराम है, क्योंकि वो हमें इल्म सिखाते हैं और उस्ताद का मकाम बड़ा बुलंद है। तो आप उनको इल्म हासिल करने का जरिया बनाइए। दुआओं की मशीन हम बना लेंगे तो मायूसी आने लगेगी, इसलिए कि कुछ दुआएं पूरी हो जाएंगी, कुछ दुआएं पूरी नहीं होंगी। मैंने आपसे यहां एक किस्सा अर्ज किया था कि जिस जमाने में मैं चक्की के दो पार्टों में डाल के पीसा जा रहा था, कि मेरी हड्डियों का भी सुरमा बन रहा था उस वक्त, तो सबसे पहली जद आई ही मेरी फिनांसिस पर थी। और उस जमाने में आलम यह था कि आहिस्ता आहिस्ता यह हालत हो गई थी कि ये नहीं मालूम था कि रोटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी अगले वक्त। तो दिन ब दिन मैं तंगी और फाका कशी की तरफ जा रहा था। तो मेरे मुर्शिद फरमाते थे कि अल्लाह तुम्हें बहुत वसी रिस्क दे रहा है, जो जो आप मेरे मुर्शिद साहब फरमाते गए कि अल्लाह तुम्हें बहुत वसी रिस्क अता फरमा रहा है, मैं उतना ही फाके कशी की तरफ जाता रहा। ये मर्सिडीज का चस्का मुझे 1982 से है, तो 1982 फर्स्ट टाइम मैंने मर्सिडीज खरीदी थी, उसके बाद से हमेशा मेरे पास मर्सिडीज रही। तो एक वक्त आया कि वो खाने को रोटी नहीं थी तो पेट्रोल कहां से आता, तो वो भी लॉक हो गई और मैं पैदल चलने लगा। तो उन्हीं दिनों में एक दिन मुर्शिद साहब फरमाने लगे कि तुम्हारी नई मर्सिडीज आ रही है और उसका ये रंग है, ये शिकल सूरत है, अंदर से वो ऐसी है, रात मैंने तुम्हारी नई मर्सिडीज में सैर कर ली। और मेरा ये आलम था कि जून जुलाई की तपती धूप में मैं मर्सिडीज पर तो क्या सवार होके आता, मैं तो अपनी टांगों पर सवार होके आता था, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं थी कि मेरे मुर्शिद साहब मेरे बारे में क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह बड़ा वसी रिस्क अता फरमा रहा है और पेट्रोल ना होने की वजह से मैंने जो मौजूदा मर्सिडीज थी वो भी लॉक कर दी थी। तो मुझे तो गर्ज इस बात से थी कि मेरे मुर्शिद साहब बहुत अजीम इंसान है कि वो इल्म भी अता फरमा रहे हैं और तरबियत भी कर रहे हैं। मुर्शिद साहब दुनिया से तशरीफ ले गए, तो कुछ ही अरसे के बाद रिस्क आना शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने बहुत रहमत फरमा दी रिस्क के मामले में। तो उस वक्त पता ही चला कि मुर्शिद साहब कितने साल पहले इस सूरत हाल के बारे में फरमा रहे थे कि अल्लाह तुम्हें रिस्क अता फरमा रहा है, बहुत वसी रिस्क अता फरमा रहा है। तो एक नई मर्सिडीज खरीदी मैंने, उसको मैं चलाता हुआ शेखपुरा रोड पर जा रहा था गालवन, तो सडनली उसके अंदर डैशबोर्ड पर नजर पड़ी, तो एकदम से एक फ्लैश हुआ दिमाग में कि मुर्शिद साहब इसी का तो बता रहे थे कि नई मर्सिडीज अल्लाह ने दे दी तुम्हें। ये और बात है कि आपने कई साल पहले फरमाया। तो तो कई साल के बाद वो गाड़ी वो एग्जैक्टली वही थी मुर्शद साहब ने फरमाई थी बात। तो मुर्शद साहब को आप उनकी दुआओं की कबूलियत उनकी पेशगोइयों उस पर न परखिए, मुर्शद साहब को परखिए उनके इल्म की बुनियाद पर कि रब ने उन्हें इल्म कितना अता फरमाया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे से मुलाकात होती है, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।